मुश्किल अल्फाज की वजाहत। बसा, बासा, मानी है परागंदा करना, दूर दूर तक फैला देना। किसी चीज का मुतफर्रिक होकर सब अतराफ में दूर दूर तक फैल जाना। इसमें इरादे का दखल नहीं होता, जो चीज फैलती है ना उसके अपने इरादे का कोई दखल नहीं। जैसे कुरान में पहाड़ों के लिए आया है, वबुस्सतिल जिबालु बस्सन फकानत हबा अम्बस्सा। फिर इसी तरह कल फिराशिल मबसूस, रिजाल, रिजलुन वाहिद है, रिजाल जमा है और रजुल वाहिद है, एक मर्द को कहते हैं, रिजाल बहुत से मर्दों को। निसाअन इमरतुन वाहिद है और निसा इसकी जमा है। तसाअलूना सीन हमजा लाम साला, सवाल करना। वल अरहाम रहामीम, रहम से है, पेट के रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरहाम जमा है। रकीबा राकाफ बा, इसके मानी है गर्दन। रकबत उनका लफ्ज आपने सुना होगा, गर्दन के लिए आता है ना, तो रकीब भी इसी से कहते हैं, जो गर्दन उठा उठा कर देखता है इधर उधर। बाज औकात ये हमारी उर्दू शायरी में और अरबी उर्दू अदब में, एक महबूब और आशिक है, महबूब आशिक और उसके दरमियान तीसरा किरदार रकीब का है। और इसी तरह गर्दन आजाद करना, रकबा, क्योंकि गुलाम को आजाद करना, गर्दन आजाद करना। यहां पर है ये सिर्फ अल्लाह के लिए आई है कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों के आमाल की निगरानी कर रहा है। वह आतुल यतामा, यतीम वाहिद है, अल यतीम वाहिद और अल यतामा इसकी जमा है। या तामीम लफ्जी मानी है कि कट जाना, तो नसब का सिलसिला कट जाता है, बच्चा जो है वो अलग अकेला रह जाता है, और जिसका बाप नहीं है उसको यतीम कहा जाता है। अमवालहुम, माल वाहिद है, अम्बाल जमा है। खबीस खाबा सा, जाहिरी और बातनी दोनों लिहाज से, जो चीज खराब हो गंदी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बातनी लिहाज से क्या है, जैसे कोई हराम चीज है, जाहिरी तौर पर वो अच्छी लग रही है लेकिन हराम है, तो वो भी खबीस है। और वैसे फिर जैसे सुअर है तो ये चीज भी खबीस है, तो दोनों तरह इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तयिब, तयिब जो है ये पाक को कहते हैं, और तूबा लोग नाम रखते हैं, तय्यब नाम रखते हैं, तय्यबा नाम रखते हैं, तो ये भी जाहिरी और बातनी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है, मादी और हिस्सी दोनों तरह इसका इस्तेमाल होता है। پھر اموالا ہم آیا، مال واحد ہے، اموال اس کی جمع ہے، کانا کاونون، اور اسی سے کونو مکان، کانا کونو کنتا کننا کن، یہ سارے اس کی فیملی کے الفاظ ہیں. لفظی معنی ہے تھا، کانا سے لفظی معنی تھا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہے کے معنی بھی دیتا ہے، ہو موقع کی مناسبت سے. حوبن، حوبن اس کا مادہ ہے ہا بو با، اس کے معنی ہیں گناہ کے. اصل میں یہ لفظ جو ہے حوب جو ہے یہ اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ڈانٹنے کے لیے وہ یہ لفظ جو تھے وہ نکالتے تھے، تو اسی سے جیسے طلاق دینا تب بھی ہے کہ طلاقن ام ایوب حوبن، ام ایوب کو طلاق دینا گناہ عظیم ہے. پھر حابا حوبن حوبن حیابت، تو جرم کا ارتکاب کرنا. بعض اوقات یہ حوبا کا لفظ نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفس کے معنی میں، اور اصل میں حوبا ایسے نفس کو کہتے ہیں جو گناہ کا مرتکب ہو، جیسے ان نفس لامارتم بسو، تو اہل عرب ایسے نفس کو حوبا بھی کہتے تھے کہ نفس امارہ تو برائی کرنے کا حکم دیتا ہے یا برائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو نفس امارہ کو اہل عرب حوبا بھی کہتے تھے. تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بڑے گناہ کے لیے، گناہ کے لیے طلاق دی جائے یا یہ کہ گناہوں کی جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے یا گناہ جو ہے وہ کیا جائے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن میں گناہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں کچھ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. جی ہاں شاباش، جیسے زمبن ہے اور یہ پہلا درجہ ہے، اور آٹھ الفاظ آئے ہیں. حوب جو ہے یہ اس کا تیسرا درجہ ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ حوب تو بنیادی معنی تو ڈانٹ ہے نا، اونٹ کو انہوں نے ڈانٹا، اپنے جانور کو ڈانٹا، تو اسی سے یہ لفظ گناہ کے لیے استعمال ہونے لگا. تو ہر وہ گناہ جس کا کرنے والا ڈانٹ کا مستحق ہو جائے، ہر وہ گناہ جس کا فائل گناہ کا مستحق ہو، اولاد جو ہے والدین کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے بھی ہے کہ حوبا اس نے گناہ کیا، اس کو ڈانٹ پڑنی چاہیے. اسی طرح والدین جو ہیں اولاد کی تربیت میں کمی کریں، ان کی پرورش اور شفقت میں کمی کریں، تو پھر والدین حوبا کر رہے ہیں، اب ان کو ڈانٹ پڑنی چاہیے. اور امام راغب اصفہانی مفردات القرآن جنہوں نے جو ہے وہ کمپائل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کاموں سے سختی سے روکا جائے، تو اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو حوب کہلاتا ہے. حوب پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 3 میں مثنی وثلاثی ورباع، یہاں بھی آپ پڑھ رہی ہیں، اور آیت نمبر 1 میں آپ نے پڑھا واحدۃن. پھر اسی طرح آپ آگے چلیے اور جب آپ وراثت کی تقسیم پڑھیں گی تو وہاں پہ بھی آپ جو ہیں وہ گنتی جو ہے وہ پڑھیں گی، گنتی آپ پڑھیں گی जिसमें जो है वो आयत नंबर आप 11 को देख लीजिए कि निस सुदुस फिर जो है वो सुमुन है, सुलुस के बाद जो है आप देख सकती हैं रुबा है, निस है। तो इस तरह आप गिनती के मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि इसम अदद व मदूद, अदद व मदूद, अदद वो होता है कि जिससे गिनते हैं, मदूद जिसे गिना जाता है। जैसे देखिए मेरे पास इस वक्त बहुत सी तफसीर पड़ी हुई हैं, तो तफसीर जो है ये क्या है, मदूद है। अगर ये जो है वो ये 5 है तो फिर क्या आएगा, खमसा। तो खमसा अदद है और ये तफसीर जो है ये क्या है, ये मादूद है। तो अदद व मादूद, तो अदद जिसे गिनते हैं, मादूद जो गिना जाता है, जो चीज गिनी जाती है। ये भी मार्फा की एक किस्म है, इस्म अदद जो है, इस्म अदद ये मार्फा की एक किस्म है। और मार्फा क्या होता है, किसी खास शख्स चीज या जगह का नाम। वाहिद गिनती में सिर्फ जो है वो क्या आता है, पहले हिंसा या एक के मकाम पर आएगा। मसलन देखें कि कभी वाहिद की जगह क्या आएगा, अहद, क्योंकि अगर मुजक्कर चीज गिन रहे हैं तो अहद अशरा, और अगर मुअन्नस चीज गिनी जा रही है तो वाहिदतुन वाहिदतुन। और अगर वहीद का लफ्ज इस्तेमाल हो, वहीद तो अकेला ही है, तो एक के मानी दे रहा, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क भी है। पीछे आपने जो है वो पढ़ा वाहिदतिन, तो नफ्स जो है चूंकि ये मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है तो वाहिदतिन जो है वो आ गया, मुअन्नस का अदद जो है वो इस्तेमाल किया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे मसना सुलासा व रुबा का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल हुआ है, और ये जो लफ्ज है ना, ये जो अदद है मसना सुलासा व रुबा, तो अब आप देखें कि वाहिद के लिए अगर आता तो मुख्तलिफ होना था फवादा, और दो के लिए मसना आता है दो दो। अब मसना अगर आप कहेंगी तो सिर्फ दो नहीं है, दो दो। इसी तरह जो है वो सुलासा, तो इसके माने तीन के नहीं है, तीन तीन। रुबा जो है चार चार, सुमान अगर होता तो आठ आठ। इस सिलसिले में ये बात याद रखने वाली है कि जब भी इस तरह से गिनती होगी, मसना सुलासा रुबा, तो फिर जो है दो दो तीन तीन चार चार जो है वो इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि अगर तरतीब मुराद हो, मसलन पहली जो है ये अव्वल है और दूसरी जो है उसको हम क्या कहेंगे, फिर उसमें जो है सानी सानिया, सालिस राबे, तो एक के लिए अव्वल, फिर आगे जो है 10 तक फाइल के वजन पर आएगा, फाइल के वजन पर आएगा। और जैसे अभी विरासत की तकसीम में आप पढ़ेंगी तो कसरी आदाद है, कसर, जैसे एक चीज के बटे हुए हिस्से, बटा नहीं आप कहते तो, हाँ फ्रैक्शन, तो आधा आधे के लिए तो निस्फ आएगा, फिर इसके बाद जितना भी है ना फोल उनके वजन पर, फोल उन फा आयन लाम, फा पर भी पेश आएगी आयन पर, तो फोल उनके वजन पर, जैसे सुलुस सुदुस उश, तो ये सारे क्या हैं कि इसमें जो है फिर फ्रैक्शन होगी। जहां तक एक और दो की बात है, तो अगर चीज मुजक्कर है तो उसके साथ जो है जिस चीज को गिना जा रहा है। अदद और मादूद दोनों मुजक्कर और मुअन्नस होंगे, एक और दो में मुजक्कर और मुअन्नस। अगर चीज मुजक्कर है तो गिनती भी मुजक्कर आएगी, अगर चीज मुअन्नस है तो गिनती भी मुअन्नस आएगी, लेकिन 3 से लेकर 10 तक अगर जिस चीज को आप गिन रहे हैं वो मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस आएगा, उलट आएगा। 3 से 10 तक जिस चीज को गिन रहे हैं अगर वो मुजक्कर है तो गिनती मुअन्नस होगी। जैसे अरबाता अय्याम, अय्याम जो है यहाँ पे मुजक्कर है ना, तो गिनती जो है अरबाता ता आ गई, ये मुअन्नस आ गई। और अगर मादूद मुअन्नस हो 3 से लेकर 10 तक, अगर मादूद मुअन्नस हो तो अदद मुजक्कर आएगा। जैसे बकरातिन गाय, अब गाय मुअन्नस है जमा भी है, लेकिन अब गिनती क्या आएगी, कितनी गाय है, 7। फिर 11 और 12 के आदात तस्कीर और तानीस के लिहाज से मादूद के मुताबिक आएंगे। तो आप यूं याद रख सकती हैं कि 1 और 2 मुजक्कर और मुअन्नस जो है दोनों के लिहाज से अदद जो है मुजक्कर और मुअन्नस को फॉलो करता है। 3 से 10 तक एक दूसरे के उलट आते हैं, और 11 और 12 में भी फिर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफी है। अदना, अदना के 2 रूट हैं, दाल नून वो भी और दाल नून या भी। तो दाल नून जब वो आता है इसके मानी है दाल नून वो के नजदीक होना, दुनिया। और अगर दाल नून या है तो घटिया, रद्दी, दनीउन, जलील के लिए ये लफ्ज आता है, दिनाया, दनाया। तो यहां पे अदना इसके मानी है करीब तरीन, और ये इसम तफदील है। जैसे होता है ना अफलू के वजन पर जब आता है तो, लेकिन जब हरफे इल्लत आता है फिर अफलू का वजन नहीं होता। कैसे, जैसे अकबरू, अक्सरू, आलमू, और लेकिन अगर हरफ इल्लत आ गया सुगरा, कुबरा, अदना, हरफ इल्लत का पता है क्या है, अलिफ, वो और या। अलिफ के ऊपर जब जेर जबर होगी, जेर जबर पेश, हमजा आप कह सकते हैं, तो अलिफ वो या जो है ये क्या है, हमजा भी हो सकता है और वैसे अलिफ भी हो सकता है, दोनों ही अलिफ वो या, इनको जो है ना हरफे इल्लत कहते हैं। इल्लत का मतलब बीमारी है, ये अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं। तो जब ये इल्लत है हरूफ के अंदर तो इसमें वजन फिर मुख्तलिफ हो जाता है। अब देखिए खैर, खैर भी इसम तफ़सील में से है। तऊलू, ऐन वौलाम, वो चीज जो इंसान को हिला कर डाले, फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बे इंसाफी के लिए, क्योंकि जब बे इंसाफी की जाती है तो आप सोच लें कि बे इंसाफी जो है वो इंसान को हिलाक करने वाली चीज है। क्योंकि बे इंसाफी करने के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं, और औल सीधी राह से हट जाना हर ऐसी चीज के मुतल्लिक इस्तेमाल होता है जो इंसान को बोझल कर दे और वो इसके बोझ के तले दब जाए। तो इससे फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि किसी से हक से ज्यादा ले लेना, जितना हक बनता था ना तो उससे ज्यादा ले लेना। तो जितना हक बनता है अगर उससे ज्यादा ले लिया जाए तो फिर क्या है कि बेइंसाफी कर दी। तो ऐसी बेइंसाफी जिसमें दूसरों का हक तलफ हो और हक दबने वाले के लिए गिरावार भी हो, क्योंकि जो हक दबाएगा कोई सही बात तो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि औल का लफ्ज हर ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसान को हिला कर डाले। अब आप देखें कि अहलो अयाल, अयाल का लफ्ज जो है ना, इसका रूट भी यही है। अहलो अयाल जब हम बोलते हैं अयाल, तो मानी क्या होते हैं? घर वाले। अब घर वाले कैसे हिला करते हैं? जाहिर देखें तो नहीं लगता कि ये अजीब बात है कि अयाल भी यही है। तो वो अफराद जिनके अखराजात का इंसान जिम्मेदार हो, जिनके बोझ के नीचे दबा हुआ हो, तो अब नान नफके की जिम्मेदारी है, बीवी बच्चे, अब मर्द जो है उनके बोझ के तले दबा हुआ है। और मर्द क्या करता है, हर वक्त उसको फिक्र होती है कि कैसे कमाए, कैसे खिलाए, मुश्किल से आसानी हो, जो कुछ भी हो, तो मुस्तकिल एक भारी मुसीबत और जिम्मेदारी होती है मर्द के ऊपर अहलो अयाल की। तो अयाल जो है यही इसके मानी है कि जैसे किसी के ऊपर जो है वो किसी का जो है वो एक बोझ है, जिम्मेदारी है। सदुकाते हिन्ना, स्वाद दाल काफ सिद्क से है, और सिद्क जो है ये सच्चाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर ये लफ्ज जो है ये मेहर के मानी में आया है। नेहला, नून हालाम शहद की मक्खी को भी कहते हैं। इस अतिये को कहते हैं जो किसी को तोहफा तन दिया जाए। औरतों के मेहर को भी नेहला कहा जाता है। हनीया मरिया, हनिया हनिया लोग नाम भी रखते हैं। इसका मादा है हा नून हमजा, हर वो चीज जो बगैर मशक्कत के हासिल हो, नतायज के एतबार से खुशगवार भी हो। तो ऐसी चीज जिसमें मेहनत मशक्कत ना ज्यादा करनी पड़े और वो मिल जाए, और दूसरा ये कि हो खुशगवार। मरिया, मीम रा हमजा, अलमरियू, अलमरियू औरत को कहते हैं। अब आप देखें कि आपने पढ़ा ना अल इमरातु औरत, अलमरु मर्द के लिए आता है। असल में अलमरियू इस नाली को कहते हैं जो मेदे के सिरे से हलक तक मिली हुई होती है। कौन सी नाली? मेदे के सिरे से हलक तक मिली हुई है, इसी से खाना जो है खुशगवार हो गया। और खाना चूंकि अच्छा लगता है तबीयत को, तो गिजा की नाली में बसहूलत उतर गया। तो क्या मुनासिबत होगी उस नाली में जो मेदे के सिरे से हलक तक मिली हुई है, और खाना उसके जरिए मुंह से खाया है और फिर जो है वो मेदे तक चला गया। और खाना चूंकि इंसानी तबीयत को खुशगवार लगता है, और आसानी से वो हलक की नाली से उतर कर मेदे तक पहुंच जाता है। अब मर्द को भी कहते हैं, औरत को भी कहते हैं, क्योंकि ये दो रिश्ते जो है ये आपस में मरहूब भी है ना, पसंदीदा है। और मर्द औरत के जरिए ही जो है वो बहुत सी चीजें जो है फिर वो आगे मिलती हैं, आगे पहुंचती हैं। तिबना, तिबना तैयब से ही है। तिबना पहले था असल में, हनी मरिया से पहले तिबना भी था ना। फिर इसके बाद है असुफाहा, या पहले भी पढ़ चुकी हैं, सीन फाहा, ये बेवकूफ के लिए इस्तेमाल होता है। वक्सू हूं, कैफ सीन वो, लिबास देना या कपड़ा देना, लिबास या कपड़ा पहनाना। आपने लिबास के लिए और क्या पढ़ा था? लबासा, लबासा लिबास के लिए पढ़ा था, और से आपका लफ्ज भी पढ़ा था। हाँ, सा वोबा, और इसके मानी है कपड़ा, है ना, कि कपड़ा जो है वो लेता है इंसान, और इसको जो है फिर लिबास को अपने ऊपर जो है वो पहन लेता है। तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और वक्सु हुम के मानी होते हैं किसी को लिबास पहनाना या कपड़ा देना। आयत नंबर 6 में है, एनस तुम, हमजा नून सीन, उन्स, उन्स पाना, जैसे जो है वो किसी को देखना, इंसान के इंसान फितरी तौर पर मुआशरत पसंद है कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, एक दूसरे को देखना मिलना रहना उन्स इसी से है। तो अनस तुम कि जब तुम देखो, रुश्दन, रुश्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अकलमंदी के लिए, रुश्द। इसराफन, इसराफ जो है सीन राफा जो है ये हद से बढ़ना। बेदारन, बादाल रा, किसी काम के लिए जल्दी करना। बदरुन, पूरे चांद को बदर कहा जाता है, बदरे कामिल, क्योंकि वो सूरज से पहले तुलू होता है। तो बिदारन यहाँ पे जल्दी के मानी में आया है। हाँ, तो असल में वो चांद भरा हुआ होता है और रुपयों से भरी हुई जो थैली है उसके लिए फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लिर्रिजाली नसीबुन, रजुलुन वाहिद है, रिजाल जमा है। नसीबुन इसका मादा है नून स्वाद बा, नस्ब, हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिस्से के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं, नसीब। इससे मुराद वो मुय्यन हिस्सा है जो किस्मत का लिखा हो, जो मुकद्दर में हो, खा वो अच्छा हो या बुरा। क्योंकि नसब कहते हैं किसी चीज को गाड़ देना, नसब कर देना, गाड़ देना, तो इसी से नसीब किस्मत के लिखे को कहा जाता है। कल्ला, काफ लाम लाम, कल्ला इसके मानी है कलील, थोड़ा। कसूरा का सारा, कसरत ज्याती के मानों में आता है। मफरूदा फारा द्वाद, सख्त चीज को काटना, तो काटा हुआ अलग किया हुआ, जैसे जब किसी चीज को काट कर अलग कर दिया जाता है तो जैसे एक मुय्यन चीज है, फर्ज है। अलकिस्मता, काफ सीन मीम, और तकसीम मानी क्या है के बांटने के वक्त, तकसीम के वक्त। आयत नंबर 9 में है सदीदन, सीन दाल दाल, सीन दाल दाल इसके मानी होते हैं दीवार के आड़ के। बाज कहते हैं कि वो आड़ जो कुदरती तौर पर हो, बाज कहते हैं इससे मुराद खुद बनाई हुई आड़ है, खुद बनाई हुई दीवार है। तो असल बात क्या है कि खुद बनाई हुई हो या फिर मस्नूही तौर पर आड़ हो, तो दोनों के लिए सदीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और तशबीह के तौर पर हर उस चीज को सदीद कहा जाता है जो कि रोक रुकावट उसका काम दे। बड़ा मशहूर मुहावरा है अरबी जबान का कि अल फकीर उल्लजी लातुफ्तहु लहू सुददुस सुल्तान, वो फकीर जिनके लिए बादशाह के दरवाजे खोले ना जाएं। तो यहाँ पे सुदत जो है उस बरामदे को कहते हैं जो कि दरवाजे के सामने बनाया जाता है ताकि बारिश जो है उससे बचाव हो सके और दरवाजे से अंदर बारिश दाखिल ना हो सके। बहुत से घरों में बरामदे बने होते हैं ना, तो जैसे अब वो बरामदे क्या कर रहे हैं, एक रुकावट का काम कर रहे हैं। यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सदीद, और सदीद जो है इसके मानी है सीधी। सदीद के मानी क्या है, सीधी, के ऐसी बात जो बिल्कुल सीधी है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जैसे वो जो दीवार बनाई है तो उसने क्या किया, सीधी दीवार है तो उसने आड़ का काम किया, तो इसी तरह फिर सदीद का लफ्ज जो है वो सीधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक, जिसमें कोई उलझाव ना हो, जिसमें कोई टेढ़ ना हो। तो उसके लिए सदीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आप अगर देखें तो वैसे सीधे के लिए कुरान में चार लफ्ज आए हैं, और सदीद जो है ये उसका सब आला दर्जा है, सबसे ऊंचा आखिरी दर्जा है, कि ऐसी रोक आड़ या दीवार जो दो चीजों के दरमियान बनाई गई है, लेकिन उसमें कोई रखना नहीं है, कोई ऐंच पेंच नहीं है। क्योंकि जब रोक या रुकावट या दीवार क्या होती है, तो दीवार भी जैसे सीधी होती है और जो आड़ खड़ी की जाती है तो जैसे वो भी सीधी, तो उसी से उधार के मानी लेकर कौले सदीद, ये एक मुहावरा मशहूर हो गया कि ऐसी बात जिसमें कोई चक्कर ना हो, कोई रखना ना हो, कोई हेर फेर ऊंच नीच ना हो, सीधी बात, सच्ची बात, दुरुस्त बात। और इसका ऑपोजिट है कौलु जूर, कौले जूर, झूठी बात, झूठ।